अनुराग, सुसमाचार और समलैंगिकता, भाग 7, पार्ट 7।
डॉक्टर डेविड प्लाट।
यदि आपके पास बाइबल हो तो मेरे साथ रोमियो की पत्री अध्याय 1 खोल लें। मैं कुछ परेशान सा था, परंतु इस समय यथासंभव तैयार रहना चाहता हूँ। मेरे विचार में आज के युग में सुसमाचार और समलैंगिकता अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। मेरे विचार में ये वर्षों से ही एक महत्वपूर्ण विषय है, विशेष करके जब इसे किसी किसी स्थान पर इसे संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। कलीसिया के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण विषय है, और स्पष्ट कहता हूँ कि कलीसिया ने इस क्षेत्र में जो काम किया है वो अपर्याप्त है। मेरे विचार में ये बाइबल आधारित विषय है। इस विषय पर न्यायालय को क्या कहना है, राजनीतिकों को क्या कहना है और समाज सेवकों को क्या कहना है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे क्या कहना है और आपको क्या कहना है, मुझे इसकी भी चिंता नहीं है। मैं केवल चिंता करता हूं तो इसकी कि परमेश्वर को क्या कहना है। और मैं आरंभ ही से मानता हूं कि इस पर चर्चा करने का मेरा अधिकार वचन की प्रासंगिकता से होगा। अतः ये हमारा लक्ष्य है कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ लोग बाइबल को परमेश्वर का वचन नहीं मानते हैं, वरन परमेश्वर में भी विश्वास नहीं रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इन वर्गों में तो नहीं। मैं ये मानकर आरंभ करता हूँ कि आप परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अतः हम ये मानकर चलेंगे कि आप बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हैं। यदि ऐसा है तो हमें अपने सृजनहार की बात सुनना है। तीसरा कारण, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेदर और मेरे परिवार में भी समलैंगिक जन हैं। मेरे अनेक मित्र समलैंगिक हैं। ये विषय कानून, नीतियों और विवादों का नहीं है, ये विषय मनुष्यों का है। मनुष्य प्रेम करता है और प्रेम पाने की आशा करता है, और कुछ मनुष्य उसे लिंग भेद बिना पाना चाहते हैं। मैं आरंभ में ही इसे व्यक्तिगत रूप देना चाहता हूँ। मैं ये भी विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता। अन्य अध्ययनों की नाई इसमें भी परिस्थितियाँ अलग अलग वरन अनेक हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से अनेक मसीह के अनुयायी हैं। आप में से अनेक हैं तो नहीं, परंतु आपके मन में विचार हैं या आप समलैंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं और कुछ विपरीत लिंग कामी हैं। मैं आप सबकी परिस्थितियों के प्रति विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता हूं, परंतु मैं आरंभ ही से समलैंगिकता के विषय में सांसारिक विषय पर वैयक्तिक विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैं नहीं कहता कि ये विचार ही सब कुछ हैं, परंतु ये प्रचलित विचार हैं। समलैंगिकता जन्मजात है, जिसे वे व्यक्त करते हुए कहते हैं, मैं जन्मजात समलैंगिक हूँ, परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है, ये मेरे जीवन में परमेश्वर का वरदान है। मेल वाइट मसीही समलैंगिक स्त्री पुरुष अभय लिंगी और परलैंगिक स्त्री पुरुषों के व्याख्यात प्रवक्ता हैं। उनका कहना है, मैंने अपने लैंगिक दिशानुकूल को परमेश्वर का वरदान मानकर स्वीकार करना और आनंद लेना सीख लिया है। दूसरा प्रचलित विचार है कि समलैंगिकता अपरिवर्तनीय है, समलैंगिकता बदली नहीं जा सकती है। ये मेरा व्यक्तित्व है, ये एक प्रतिष्ठित समलैंगिक मनोवैज्ञानिक ने कहा। लैंगिकता बदली नहीं जा सकती, समलैंगिकता से विषम लैंगिकता में परिवर्तन मानसिक एवं सामाजिक कुप्रभाव डालता है। कहने का अर्थ यह है कि जैसा है वैसा ही रहने दो, अन्यथा बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये अपरिवर्तनीय है। कुछ का ये मानना है कि समलैंगिकता में प्रेम है। अनेक जन कहते हैं, समलैंगिकता में बुराई क्या है, मैं और मेरा साथी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ये विशेष संबंध आपको तो परेशान नहीं करेगा, ये अनुचित कैसे है। एक समलैंगिक मसीही लघु पुस्तिका का उद्धरण है, दो स्त्रियां या दो पुरुषों के परस्पर संबंध स्त्री पुरुष के संबंधों के तुल्य प्रेमपूर्ण हो सकते हैं। मसीह समलैंगिक और विषम लैंगिक दोनों के पापों के लिए मरा, अतः समलैंगिक स्त्री पुरुष मसीह के मोक्षक अनुग्रह के पास स्वतंत्रता पूर्वक आ सकते हैं और अपनी पहचान और अपनी कामुकता का सच्चा अनुभव बनाए रख सकते हैं। कोई उन्हें क्यों रोके। हम इससे डरते क्यों हैं? अगला चरण तर्कपूर्ण है, समलैंगिकता प्रेमपूर्ण है और समलैंगिकता मसीही है। अनेक जन तो ये भी कहते हैं कि यीशु ने समलैंगिक संबंधों के विषय कुछ नहीं कहा है। ट्राय पेरी एक समलैंगिक मसीही अगुए हुए हैं, उन्होंने कहा, यीशु ने समलैंगिकता के बारे में क्या कहा? पूछा जाए तो इसका उत्तर सरल है, यीशु ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। यीशु की मुख्य रुचि प्रेम में थी। अन्य हैं जो कहते हैं मैं मसीही विश्वासी हूँ और मैं गे समलैंगिक हूँ। यदि समलैंगिकता अनुचित है तो ये कैसे होगा? जब मेल वाइट, जो अनेक अग्रगणी पादरियों के साथ सेवारत थे, घोषणा की कि वो समलैंगिक हैं, तब कहा, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 30 वर्ष संघर्ष करने के बाद अंततः आज मैं कह सकता हूँ कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मैं गे समलैंगिक हूँ। मुझे गर्व है और परमेश्वर मुझे शर्त रहित प्रेम करता है। अन्य कहते हैं मैं समलैंगिकों की आराधना में जाता हूँ और वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देती है। यदि समलैंगिकता अनुचित है तो ये कैसे संभव है? रेम सिल्विया पेंटिगन, जो गे थेलोजी के पक्षधर हैं, उन्होंने पहली बार समलैंगिकों की आराधना में उपस्थिति होने के पश्चात कहा, मुझे वहाँ और मुझमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति का बोध हुआ। वे भी मेरी ही तरह आत्मा का बोध प्राप्त कर रहे थे और मेरी ही तरह परमेश्वर से प्रेम करते थे। वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और परमेश्वर निश्चय ही वहाँ था। अगला तर्कपूर्ण चरण ये है कि समलैंगिकता बाइबल आधारित है। धर्मशास्त्र के वे अंश जो समलैंगिकता को संबोधित करते हैं, उन्हें अनुचित अर्थ निर्धारण प्रदान किया गया है। बाइबल वास्तव में समलैंगिकता का दोष नहीं देती है। ये वाक्यांश और विचार वास्तविक हैं, वे वास्तविक भावनाएं हैं। मेरा लक्ष्य उन्हें एक एक करके सुनाना और उन पर अपनी राय प्रकट करना नहीं है। इसकी अपेक्षा हम वचन का मनन करेंगे और देखेंगे कि वचन किस प्रकार परोक्ष या अपरोक्ष उत्तर देता है। मैं चाहता हूं कि हम वचन के अपने अवलोकन में सत्यनिष्ठ हों और यथार्थ में देखें कि वो क्या कहता है। पौलुस कुरिन्थ नगर में से रोम की कलीसिया को पत्र लिख रहा है। पिछले अध्ययनों में हमने देखा था कुरिन्थ एक अनैतिक नगर था जहां समलैंगिकता आम बात थी। पौलुस हमारी ही तरह के एक व्यभिचारी नगर से ये पत्र लिख रहा था। अतः ये हमारे लिए स्मरण योग्य है कि बाइबल इस विषय में जो कहती है वो अंधापन नहीं है। अतः पौलुस का परिवेश भी वैसा ही पापमय था जैसा हमारा है। वहाँ व्यभिचार का पाप व्याप्त था और परिणाम स्वरूप मैं आरंभ से ही आपको चिताना चाहता हूँ कि यदि आपके मन में समलैंगिकता के विचार कभी नहीं आए तो भी ये वचन आपके लिए है। ये वचन हम सब के लिए है। सत्य तो ये है कि मैं पहले समलैंगिकता को परे रखकर पाप और व्यभिचार के बारे में परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना चाहता हूँ। अतः हम रोमियो की पत्री अध्याय 1:18 से अंत तक पढ़ेंगे। रोमियो 1:18-32, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व, जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगा, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की सूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कमातुर होकर चलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्जन काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मयारहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न होते हैं। रोमियो अध्याय 1:18 से रोमियो अध्याय 3:20 संपूर्ण धर्मशास्त्र में मनुष्य के पाप का स्पष्ट एवं विनम्र परिदृश्य है। कुछ लोगों का कहना है कि 26 और 27 में समलैंगिकता के लिए मूल भाषा यूनानी में पाप शब्द काम में नहीं लिया गया, अतः वो इसे पाप नहीं कहता है। यहाँ वो पाप शब्द को काम में न लेकर वो ऐसे 8 शब्द काम में लेता है जिनका अभिप्राय संपूर्ण नए नियम में पाप से है। इस संदर्भ में परिदृश्य पूर्ण रूपेण पाप का ही है। यहाँ मनुष्य के पतन का प्रदर्शन है और इसका 4 गुणा विकास है। ये समलैंगिकता और वचन के संदर्भ में 4 मुख्य बातें हैं जिनकी मैं आपको प्रस्तावना देता हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप वो 4 गुणा विकास देखें जिसे 3 बार कहा गया है और वो हमारे जीवन में पाप का प्रभाव प्रकट करता है। अभी हम समलैंगिकता का विषय परे रखते हैं। पहला, पाप हमारी आराधना भंग करता है। मैं आपको ये गतिक्रम दिखाना चाहता हूँ। पाप आराधना में विघ्न डालता है। 18 और 20 परमेश्वर की महानता, उसकी महिमा, उसके गुणों का परिदृश्य प्रदान करते हैं जो सब समयों में सबके सामने प्रकट है। तब आप 21 पर आते हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। दूसरे शब्दों में उन्होंने परमेश्वर को त्याग कर अन्य बातों में मन लगाया। इस प्रकार पाप हमारी आराधना में विघ्न उत्पन्न करता है। पाप परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता को महिमामय सिंहासन से हटाकर उसके स्थान पर अन्य बातों को रख देता है। इस प्रकार पाप हमारी आराधना को विकृत कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है? पाप आराधना को विकृत करता है जिसके कारण हमारा विश्वास, हमारे विचार विकृत हो जाते हैं। परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद न किया, वरन सुनिए वो क्या कहता है, व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। यहाँ परिदृश्य ये है कि जब परमेश्वर हमारी दुनिया का केंद्र ना हो, अर्थात हमारे मन में केंद्रित ना हो, हमारी आराधना का केंद्र ना हो, तो हमारे सोचने विचारने पर प्रभाव पड़ता है। ये हमारे विश्वास का कुप्रभाव डालता है और हमारा मन अंधेरा हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है, हम मूर्ख बन जाते हैं। तब तीसरी बात होती है, पाप हमारी आराधना को विकृत करता है। पाप हमारे विश्वास को विकृत करता है, हमारे सोचने विचारने को विकृत करता है। तीसरा, पाप हमारी मनोकामना को विकृत करता है। 24, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। कहने का अर्थ यह है कि पापी अभिलाषाएं शून्य से उत्पन्न नहीं होती हैं, वे पापी मन का उत्पाद हैं। पापी विश्वास का परिणाम है। पापी अभिलाषाएं प्रभावित होने लगती हैं। पाप हमारी मनोकामना को विकृत करता है और इसका परिणाम होता है, पाप हमारी आराधना, विश्वास और मनोकामना को विकृत करता है और अंत में पाप हमारे व्यवहार और कार्यों को विकृत करता है। मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। ये परिदृश्य यहाँ दिखाया गया है पद 21 से 24 में, यही बढ़ता हुआ दिखाया गया है और पद 25 में वो दोहराया गया है। उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन है। आप यहाँ विकृत आराधना का परिदृश्य देखते हैं। विकृत विचार परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदलना देखते हैं। ये दोनों बातें पद 25 में हैं। तब पद 26 में, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। किसके वश में? नीच कामनाओं के, जो विकृत आराधना विकृत विचार से प्रवाहित होती है। तब यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। ये कामाचार है। तब पद 28 एक बार फिर वही कहता है, उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा। इस प्रकार विकृत आराधना के कारण परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। किस पर छोड़ दिया? निकम्मे मन पर, जो विकृत विचार और विश्वास रखता है। इससे विकृत अभिलाषाएं और व्यवहार उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए। अध्याय एक के अंत में आप पापी व्यवहार के कर्मों की सूची देखते हैं। अब ये अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है जिसे हम मन में बसा लें। पाप शून्य से उत्पन्न नहीं होता है, इसकी जड़ हमारे मन में होती है। हमारा मन कहता है, मैं जानता हूँ सबसे अच्छा क्या है, परमेश्वर नहीं जानता। इसके परिणाम स्वरूप हम सोचने लगते हैं, मैं परमेश्वर की बात नहीं सुनूंगा, मैं वही करूंगा जो मैं सोचता हूं कि सबसे अच्छा है। इस प्रकार हमारी अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं। हमारी ये अभिलाषाएं परमेश्वर का महिमान्वन नहीं करती हैं और हम उन्हीं के अनुसार काम करते हैं जिनकी जड़ तो पहले ही से मन में थी। यदि हम में से प्रत्येक के जीवन में पाप का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि उसकी जड़ तो पहले ही से वहाँ उपस्थित थी। अतः रोमियो अध्याय एक में परिदृश्य ये है कि विकृत आराधना के कारण हमने अपने जीवन में परमेश्वर के स्वरूप को अपनी अभिलाषाओं से बदल दिया। ये गंभीर बात है। हम में से प्रत्येक ने ये किया है। हमने अपने मन में आराधना का रूप विकृत कर दिया है। हम अपने मन में परमेश्वर की महिमा को विकृत करते हैं और इससे हमारे सोचने विचारने पर प्रभाव पड़ता है, हमारी भावनाओं पर प्रभाव पड़ता है, हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। यही संपूर्ण रोमियो की पत्री 1-3 का मुख्य विषय है। यही कारण है कि रोमियो 3:23 कहता है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब मैं चाहता हूं कि हम इस परिदृश्य को, जो हम सबका है, काम वासना के साथ जोड़ें। रोमियो अध्याय एक में निशान लगाकर सृष्टि के आरंभ में चलें। उत्पत्ति अध्याय एक और दो हम लगभग प्रत्येक अध्ययन में देखते आ रहे हैं, क्योंकि ये सुसमाचार और परिवार के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी बीच मैं चाहता हूँ कि हम परमेश्वर की रचना को देखें। जी हाँ, यीशु ने समलैंगिकता पर विशेष रूप से टिप्पणी नहीं की है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो समलैंगिकता का प्रस्तावक है। उसने तो कौटुंबिक व्यभिचार पर, उसने पति या पत्नी पर अत्याचार के विषय भी टिप्पणी नहीं की। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि वो इनका प्रस्तावक है? तो फिर यीशु ने किस बात पर टिप्पणी की? जब यीशु ने काम वासना और विवाह पर टिप्पणी की, तब उसने उत्पत्ति अध्याय 2 से संदर्भ दिए। मैं चाहता हूँ कि हम उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 देखें, जहाँ से यीशु काम वासना और विवाह के संदर्भ में अपनी चर्चा का आधार चुनता है। यही विवाह और कामुकता के विषय में पौलुस का आधार है। संपूर्ण नए नियम में कामुकता पर चर्चा उत्पत्ति एक और दो पर आधारित है। ये उत्पत्ति तीन में पाप के प्रवेश से पूर्व का विवरण है। उत्पत्ति एक और दो में सब कुछ अच्छा है, यही उत्पत्ति एक के अंत में कहा गया है। यहाँ क्या था जो अच्छा था? मैं यहाँ आपको चार अच्छी बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, इस परिदृश्य में काम वासना अच्छी थी। उत्पत्ति 1:27, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अतः ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी कि आदम और हव्वा एक दूसरे से भिन्न थे, परमेश्वर ने उन्हें अलग अलग बनाया था। ये विषय भी पुरुष प्रभुता के कारण हमारी संस्कृति में विवाद का विषय बना हुआ है, अर्थात पुरुष स्त्री से ऊपर है, परंतु धर्मशास्त्र ये नहीं कहता है। यहाँ मान सम्मान की बराबरी है, नर नारी दोनों परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए थे, परंतु अलग अलग काम वासना और लिंग भेद उस समय अच्छा था। ये सब हम हमारे अध्ययन सुसमाचार और परिवार में देख चुके हैं। लिंग भेद अच्छा है, आदम हव्वा अलग अलग और विशेष सृष्टि थे, उनका मान सम्मान बराबर था, परंतु काम वासना उस समय एक अच्छी बात थी। दूसरी बात, संतान उत्पत्ति अच्छी बात थी, पद 28 में यही है, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। दूसरे शब्दों में, हर जगह आदम और हव्वा फैला दो। ये कैसे होगा? उत्पत्ति अध्याय 2:24 देखें, यहाँ क्या लिखा है, ये संतान उत्पत्ति कैसे होगी? इसी के लिए तो वो कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक ही तन बने रहेंगे। काम वासना अच्छी है, संतान उत्पत्ति अच्छी है, अब तीसरी बात, विवाह अच्छा है। अब चौथी बात, शारीरिक संबंध अच्छा है। पद 25 देखिए, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे, ये संपूर्ण बाइबल में है। श्रेष्ठ गीत इसे स्पष्ट प्रकट करता है। कुरिन्थ की कलीसिया को लिखें, पहले पत्र में अध्याय 7:4-5 में पौलुस कहता है कि शारीरिक संबंध अच्छी बात है और विवाहितों को इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। अतः उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में जो लिखा है वो स्पष्ट है कि परमेश्वर की रचना अच्छी थी, जिसमें काम वासना, संतान उत्पत्ति, विवाह, शारीरिक संबंध सब अच्छे थे। परंतु आप देखेंगे कि उत्पत्ति 3 के बाद जब पाप संसार में आया, तब से बाइबल जब भी व्यभिचार के पाप का उल्लेख करती है, तब एक ही बात आती है कि पाप उत्पत्ति 1 और 2 के परिदर्श का उल्लंघन करवाता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी भलाई और बुद्धि में सृष्टिकर्ता होने के कारण इस परिदृश्य की रचना की। उसने काम वासना और शारीरिक संबंध बनाए कि उसके उद्देश्य निमित्त उसकी अभिव्यक्ति और पूर्णता का अनुभव करें, और धर्मशास्त्र जब भी किसी ऐसी घटना का उल्लेख करता है जहाँ ये सच्चाई ना हो, तो उसे धर्मशास्त्र व्यभिचार कहता है। इसका अर्थ यह है कि उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 से हटकर किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध जो विवाह से बाहर हो अवैध है, अनैतिक है और पाप है। हमें अन्य स्थानों में व्यभिचार को नहीं देखना है। ये परिदृश्य अकेला ही पर्याप्त है, जिसमें समलैंगिकता ही नहीं विषम लैंगिकता भी पाप है। उत्पत्ति 2 के बाहर किसी भी प्रकार की कामुक अभिव्यक्ति बाइबल के अनुसार अवैध है, अनैतिक है और पाप है। ये हम में से प्रत्येक के लिए अति गंभीर बात है। हम में से प्रत्येक ने इस अभिरूप को अपनी अभिरुचियों के अनुसार बदल दिया है। एक कदम और आगे बढ़ें तो हमने परमेश्वर की स्तुति को काम वासना के अपने भोग विलास में बदल दिया है। हम सब ने एक भी नहीं बचा है। अब आप सोचेंगे, मैं इसका दोषी नहीं हूँ। यदि आप हमारी संस्कृति में किशोर अवस्था पार कर चुके हैं तो आप दोषी अवश्य हैं। आप उत्पत्ति 1 और 2 के बाहर कामोत्तेजक अभिव्यक्ति या काम संतोष के दोषी हैं। हम सब एक ही नाव में हैं। हम सब ने विचारों में या कामों में या कामना करने में इस संसार के भोग विलास को अपने मन में परमेश्वर की स्तुति से ऊपर रखा है, और उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 से हटकर अन्य दिशाओं में संतोष खोजा है, इसे समझना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल सिखाती है कि यहाँ सुसमाचार समलैंगिकता ही नहीं विषम लैंगिकता के पाप को भी प्रकट करता है। सुसमाचार हमें बताता है कि हम सब घमंडी मन के साथ जन्मे हैं। ये उत्पत्ति 3 का परिदृश्य है जो हम में से प्रत्येक को प्रभावित करता है। हमारे मन में कैसी भी काम वासना हो, उत्पत्ति 8:21 स्पष्ट कहता है कि हमारे मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम में शारीरिक आनुवंशिक गुण अनेक हैं, परंतु आत्मिक गुण एक ही है और वो है पाप, और हम में से प्रत्येक उत्पत्ति 3 के परिणाम स्वरूप पाप के स्वभाव का उत्तराधिकारी है। हम घमंडी मन लेकर जन्मे हैं जो कहता है परमेश्वर मेरी दुनिया का केंद्र नहीं है और उसकी इच्छा मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है और उसकी स्तुति मेरा जीवन नहीं है। हम सब घमंडी मन के साथ उत्पन्न हुए हैं। ये बहुत गंभीर बात है, इसे कभी ना भूलें। इसका अर्थ यह है कि बाइबल किसी को भी अवसर नहीं देती है कि कह सके परमेश्वर मुझे पाप प्रवणता में जन्म नहीं लेने देगा। अतः ये सत्य है कि हम सब घमंडी मन के साथ जन्मे हैं और हम सब में कामुकता वास करती है, हर एक में। इसके महत्वपूर्ण होने के 2 कारण हैं। पहला, अब विशेष करके समलैंगिकता की चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी धर्मशास्त्र आधारित संदर्भ को देखने से पूर्व समलैंगिक विचार, समलैंगिक वासना, समलैंगिक आचार, उत्पत्ति 1 और 2 के आधार पर परमेश्वर के अभिप्राय के सामंजस्य में नहीं है। और यीशु तथा पौलुस दोनों कहते हैं कि समलैंगिक विचार और वासना तथा आचरण उत्पत्ति 1 और 2 में व्यक्त परमेश्वर के अभिप्राय के विद्रोही हैं। ये उत्पत्ति 1 और 2 का अनुचित अर्थ निर्धारण या अनुचित अभिव्यक्ति ही नहीं, ये उसमें विहित अच्छे शारीरिक संबंधों का विरोध करना है। ये उत्पत्ति 2:24 में परमेश्वर के अभिप्राय और विवाह को भ्रष्ट करना है। इसके द्वारा कामुकता की अभिव्यक्ति जो प्रसंग से बाहर है वो हमारे मन में लाई जाती है। ये उत्पत्ति 1 और 2 का खुला अपमान है। दूसरा कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम सब ये जानते हैं कि हम दैहिक संबंधों की अवहेलना करने की प्रवृत्ति हैं। दूसरा कारण महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये समलैंगिकता का ही पाप नहीं है जो उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 का परिदृश्य विकृत करता है। विषम लैंगिकता का पाप भी ऐसा ही करता है। मैं उन पुरुषों की श्रेणी में हूँ जो संसार में शारीरिक संबंधों के दुरुपयोग के उत्तरदायी बहुसंख्यक हैं। अतः हम दूसरे की आँख का तिनका देखना बंद करें, क्योंकि हमारी आँख में लट्ठा है। टीवी में या कहीं किसी प्रकार के कामोत्तेजक प्रदर्शन को देखकर चैनल बदलना, परंतु मसीह के अनुयायी होने के कारण विज्ञापनों को देखना आदि समझदारी की बात नहीं है। यही कारण है कि धर्मशास्त्र हम में से प्रत्येक के लिए प्रासंगिक है। क्या विषम लैंगिकों के पाप स्वीकार्य हैं क्योंकि वे बहुसंख्यक हैं? कदापि नहीं। हम सब में जन्मजात घमंडी मन और शारीरिक संबंधों की विकृति की प्रवृत्ति है। अतः हम सबको, वरन हर एक को सुसमाचार की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब दोषी हैं। हमें ये सदा स्मरण रखना है। पाप ने हमारी आराधना को विकृत कर दिया है और इसका परिणाम ये हुआ कि हमारा विश्वास विकृत हो गया। व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला। मैं विश्वास को विकृत करना और परमेश्वर के सत्य को बदलने के बारे में सांस्कृतिक स्तर पर विचार करना चाहता हूँ। हम आज के युग में इस सच्चाई को कैसे अंतर्ग्रहण करें? हमने सत्य को किस में बदल दिया है? रोमियो अध्याय 1 के अनुसार हमने सत्य को समझौते में बदल दिया है। मेरे विचार में, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले समलैंगिकों और विषम लैंगिकों के बारे में कहा, कि समस्त काम वासनाएं, चाहे किशोरों में हों, अविवाहितों में हों, विवाहितों में हों, सब वासनाएं, इच्छा, व्यवहार आदि जो उत्पत्ति 2:24 से हटकर है, अर्थात विवाह से, वे सब अनुचित हैं। मैं समझ रहा हूँ कि ज्यों ही मैं कहूँगा जो संस्कृति की मुख्य प्रवृत्ति से अलग है, त्यों ही मुझे अनेक नाम दिए जाएंगे और विशेष करके असहिष्णु। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरे इस मूर्खता के विचार पर ध्यान दें। मैं एक निष्ठा से परमेश्वर के वचन को थामता हूं और प्रचार करता हूं कि विवाहित संबंधों के बाहर समलैंगिक या विषम लैंगिक अभिव्यक्ति सर्वथा अनुचित है। इसी विचार में मैं असहिष्णु होता हूं। क्या आप समझ सकते हैं कि ये दोष अपने आप में पराजय है? मेरे साथ विचार करें। यदि आप मुझे असहिष्णु कहते हैं तो आप मेरे प्रति अपनी असहिष्णुता का प्रदर्शन करते हैं। मैं तो कहता हूं कि अमेरिका उन लोगों से ऊब चुका है जो उन्हें सहन नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में, वे जो अपने आप को आधुनिक विचारों के प्रति सहिष्णु कहते हैं, वे ही सबसे अधिक असहिष्णु प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात वे स्वयं को सहन नहीं कर सकते हैं। रोमियो एक में जो परिदृश्य है उसका पालन करना सहिष्णुता है। हमने ये विचार किया कि वचन की हर एक बात सर्वथा सही और सच है, अतः किसी से असहमत होना असहिष्णुता है। अतः ये सच है और शब्दकोश में इसका अभिप्राय भी असहमति से है। यदि मैं आपके विचारों से सहमत हूँ तो मैं आपकी मान्यताओं से सहमत हूँ तो मैं आपको सहन नहीं करता हूँ। यदि आप कहें कि यीशु जगत का प्रभु है तो मैं आपके साथ असहमत हूँ, परंतु इस पल मैं आपको सहन करता हूँ। क्या आप समझ रहे हैं? सहिष्णुता स्वयं ही असहमति है, परंतु जो किया है वो है कि हमने प्रत्येक मान्यता, प्रत्येक विचार को सही और सच के स्तर पर रखा है और किसी से यहाँ असहमत होना असहिष्णु सिद्ध करें और परिणाम स्वरूप आदि पाप की असहिष्णुता हमें सत्य को खोज वंचित करें, क्योंकि आप अपनी संस्कृति में किसी से असहमत होते हैं और कहते हैं कि कुछ तो उचित नहीं है, तो आप सत्य का इनकार करते हैं। हम सत्य को अनदेखा करते हैं। इसके विपरीत हम अपने अनुभवों को सत्य के तुल सिद्ध करना चाहते हैं। आपको भिन्न अनुभव हो तो वही सच है। हम सब इसी को सच मान लेंगे और मेल से रहेंगे, परंतु हमने देखा है कि रोमियो अध्याय एक में सत्य को समझौते से बदला ही नहीं गया, वरन परमेश्वर के वचन को मनुष्य के अनुभव से ही बदल दिया गया है। अपने अनुभवों को सत्य से अधिक मान्यता देने से यहाँ हम इसे परमेश्वर का वचन मानकर चल रहे हैं, तो इसमें हमारे अनुभवों से अधिक अधिकार है और ये हमसे अलग सत्य है। अब हम प्रश्न करते हैं, ये तो पूर्ण रूपेण सत्य नहीं हो सकता है? हम प्रतिदिन परिशुद्ध सत्य पर जी रहे हैं और इसे स्वीकार भी करते हैं, जैसे 2+2=4, 2+2=4। अब चाहे आपको ये अच्छा ना लगे तो भी आपको स्वीकार करना पड़ता है। चाहे आपकी ये भावना इसके प्रति कैसी भी हो, सत्य तो यही है कि 2+2=4 होते हैं। और आप कुछ भी सोचें या माने, 2+2=4 ही रहेगा। यही गणित हमारे जीवन के अनेक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्यों में काम करता है। अब संकट यह है कि अपने जीवन के परम क्षेत्रों में हम सत्य का त्याग करके कहते हैं कि ये हमारे अनुभव पर आधारित नहीं है। यही मैं समझ पाया हूँ, वरन यही प्रकट भी है। संस्कृति को एक ओर करें और कलीसिया में देखें तो वहाँ भी यही प्रकट है। जब समलैंगिकता का विवाद उत्पन्न होता है, हमारे पास समय नहीं है कि समलैंगिकता के विभिन्न बाइबल संदर्भों को देखें। मैंने वर्षों से इस पर मनन किया है। समलैंगिकता को उचित ठहराने के लिए इन संदर्भों के अनेक नए नए अर्थ निर्धारित किए गए हैं। हम उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 देख चुके हैं, जो मेरे विचार में अपने आप में पूर्ण है। उत्पत्ति अध्याय 19 में सदोम और अमोरा का दृश्य है। परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के व्यभिचार के कारण नहीं, समलैंगिकता के समर्थों का विवाद ये है कि वे लूत के अतिथियों से परिचय प्राप्त करना चाहते थे, और यही शब्द वहाँ आया है। यदि वे उनके साथ बैठकर चाय पीना चाहते थे तो लूत को क्या आपत्ति थी? उसने क्यों कहा, ऐसी बुराई ना करो? जिस मूल शब्द पर वे विवाद करते हैं उसका अभिप्राय बाइबल के अन्य संदर्भों में भोग से ही है। आप यहूदा की पत्री पद 7 देखें तो वहाँ स्पष्ट है कि सदोम और अमोरा के विनाश का कारण व्यभिचार और दुष्कर्म दिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कहती है कि वहाँ समलैंगिकता ही एकमात्र पाप नहीं था, वहाँ पाप व्यापक था। अब आप लवव्यवस्था 18:22-20:13 देखें। लवव्यवस्था अध्याय 20:13 में स्पष्ट आदेश है, यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे। परंतु उनका विवाद ये है कि ये मूर्ति पूजा के अभिप्राय से कहा गया है, जैसा कि लवव्यवस्था 18:20 में है। अतः समलैंगिकता में मूर्ति पूजा नहीं है तो ये उचित है। अब समस्या ये है कि उसके आगे पीछे के पद पशुओं के साथ, कुटुंबियों के साथ व्यभिचार, बाल बलि आदि की चर्चा करते हैं, तो क्या ये मूर्ति पूजा के बिना उचित है? कदापि नहीं। वस्ता 1 तिमुथियुस 6:9-10 में आप देखेंगे कि 1 कुरिन्थियों 6 में पौलुस समलैंगिकता के लिए 2 शब्द काम में लेता है। वे ही शब्द हैं जो पुराने नियम के यूनानी अनुवाद में काम में लिए गए हैं, पुरुषगामी। परिदृश्य यह है कि समलैंगिकता के विषय पुराने नियम और नए नियम की शिक्षा एक ही है। अब रोमियो अध्याय 1 के विषय में उनका विवाद यह है कि पौलुस विषम लैंगिकों को समलैंगिकता के अभ्यास के लिए मना करता है, क्योंकि पौलुस को काम प्रवणता, समलैंगिक प्रवृत्ति आदि का ज्ञान नहीं था। अतः वो विषम लैंगिकों तथा समलैंगिकता को वर्जित करता है। इसमें तर्क नहीं है, क्योंकि यदि वे विषम लैंगिक हैं तो वे आपस में कामातुर होकर जलने कैसे लगे? संपूर्ण धर्मशास्त्र में ये परिदृश्य एक ही है। संपूर्ण धर्मशास्त्र में यही एक मत है कि उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में दिए परमेश्वर के आदर्श के अनुसार विवाह से बाहर वासना पाप है। यहाँ आप कलीसिया को समलैंगिकता का पक्ष लेते देखते हैं, जो वचन से वियुक्त मानवीय अनुभव है। मैं आपको कुछ महानुभवों के उदाहरण सुनाता हूँ, ध्यान से सुने। पहले हम विलियम केंट को सुने। वो समलैंगिकता पर अध्ययन हेतु यूनाइटेड मेथोडिस्ट कमेटी के सदस्य हैं। पुराने नियम और नए नियम के बाइबल संदर्भ जो समलैंगिक व्यवहार को दोषी ठहराते हैं, वे ना तो परमेश्वर से प्रेरित हैं और ना ही वे मसीही जीवन मूल को बनाए रखते हैं। ध्यान दें, वो जानते हैं, वरन ईमानदारी से कहते हैं कि धर्मशास्त्र समलैंगिकता को स्वीकार नहीं करता है, परंतु वे ये कहने का साहस करते हैं कि वो वचन परमेश्वर की ओर से नहीं है। गरी डेविड, कामस्टाक, वेस्लियन यूनिवर्सिटी के याजक कहते हैं, पौलुस द्वारा समलैंगिकता को अभक्ति कहना, अस्वीकार करना, आलोचना करना या अवहेलना करना संकटपूर्ण है। अपनी मसीह प्रथाओं में रहना तथा उन बाइबल संदर्भों की चुनौती ना देना जो हमें अपमानित एवं नाश करते हैं, तो ये अपने अत्याचार को बढ़ाना है। ये संदर्भ बार बार तब तक काम में लिए जाएंगे जब तक कि मसीही जन बाइबल से इनके हटाने की मांग ना करें, या फिर उनमें कम से कम व्यवहार निर्देशन का अधिकार औपचारिक रूप से वंचित किया जाए। दूसरे शब्दों में कामस्टाक कहते हैं कि इन पदों को बाइबल से हटा देना चाहिए। अब लूक तिमुथी जॉनसन एमरी यूनिवर्सिटी के केंडलर स्कूल में नए नियम के प्राध्यापक हैं। वो कहते हैं, बाइबल समलैंगिक प्रेम के विषय न तो सकारात्मक बात करती है और न ही तटस्थ स्थान रखती है। वो भी वही बात मानते हैं जो अन्य विचारक मानते हैं, कि नया नियम हो या पुराना नियम, आप समलैंगिक प्रेम का सकारात्मक परिदृश्य नहीं देखते हैं। अतः उनका कहना है कि बाइबल गलत है। उनका कहना है, मेरे विचार में ये स्पष्ट कहना महत्वपूर्ण है कि हम वास्तव में धर्मशास्त्र की सीधी आज्ञाओं को अस्वीकार करते हैं और समलैंगिकता को पवित्र एवं अच्छा कहते हैं। समय अन्य अधिकार का सहारा लेते हैं। ये अधिकार वास्तव में क्या हैं? हम अपने साथ हजारों अन्य जनों के अनुभवों का सहारा लेते हैं जो कहते हैं कि हमारी कामुक प्रवृत्ति वास्तव में परमेश्वर की रचना को स्वीकार करना है। ऐसा करने से हम धर्मशास्त्र के वचन का भी त्याग करते हैं जो समलैंगिकता को दोषी ठहराता है। यहाँ संकट को देखने से ना चूकें। उन्होंने सर्वाधिक प्रकट प्रश्न नहीं पूछा है। यदि हम बाइबल का अधिकार स्वीकार न करके मानवीय अनुभव पर भरोसा रखें कि वो हमारा अधिकार है, तो हम मानवीय अनुभवों में किस पर विश्वास करेंगे? ये संकट देखें और देखें कि ये विषय कैसा बाइबल व्यापक विषय है। माने जाने वाले थियोलॉजी और मसीह समुदाय के अगुए इस विषय में जो कहते हैं, मैं समलैंगिक पक्षधरों से कहना चाहता हूं कि ये कहना कि समलैंगिकता परमेश्वर के समक्ष स्वीकार्य है, तो आपको सबसे पहले ये मानना होगा कि बाइबल व्यर्थ है, पुरानी है और अव्यवहार्य है। ये वास्तव में एक अत्याचारी पुस्तक है जो विषम लैंगिकों द्वारा लिखी गई है और उन्हीं की प्रभुता के अधीन है। ये हमारे लिए अनुपयोगी है, ये हमारे लिए अनुकूल है अपने आप में या हमारे अनुभवों के लिए। यदि बाइबल हमारे अनुभवों के लिए अनुकूल है तो हम इसे अस्वीकार करते हैं और अपने अनुभवों को मान्यता देते हैं। बाइबल अनुपयोगी है, अनुकूल है और बाइबल अप्रभावी है, अपर्याप्त है। यदि परमेश्वर को समलैंगिक प्रवृत्ति का ज्ञान हमारे बराबर होता तो वो हमें ये आज्ञाएं नहीं देता। यही वहाँ लिखा और निर्दिष्ट किया गया है जो आज मेरे मार्गदर्शन के लिए अपर्याप्त है। कृपया ना भूलें, मैं सीधी सच्ची बात कहूँगा, यदि समलैंगिक अभियान द्वारा कही जा रही बातें सच हैं तब तो मसीह विश्वास की संपूर्ण नींव ढह गई। यदि आप ये सोचते हैं कि मैंने अधिक कहा तो मेरे साथ विचार कीजिए। ज्यों ही हम ये कहें कि बाइबल का कौन सा भाव सही और कौन सा सही नहीं है, कौन सा भाग हमारे अनुभव के अनुकूल है और कौन सा नहीं, त्यों ही हमने इसे संशयात्मक बना दिया। कौन निश्चित करेगा कि क्या सही है, या हम जो भविष्य में खोजेंगे वो इस पुस्तक को अनुचित घोषित करेगा? इस प्रकार तो हम संपूर्ण मसीही विश्वास का आधार ढा देंगे। यहाँ आप रोमियो अध्याय एक को क्रियाशीलता में देखते हैं। पाप हमारी आराधना, हमारे विश्वास को विकृत बना देता है। यद्यपि हम बुद्धिमान होने का दावा करते हैं, हम मूर्ख हैं। मैं नहीं कहता कि मैं बुद्धिमान हूँ, इसके बाद तो मैं कहना भी नहीं चाहता। मैं नहीं कहता कि मुझे संपूर्ण ज्ञान है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि मुझसे परे सत्य विद्वान है और परमेश्वर के जन होने के कारण हमें इस सत्य का सम्मान करना है, उसे प्रतिष्ठित करना और उस पर विचार करना है, जानना है कि वो सत्य किस लिए है और उस पर आचरण करना है। यदि हम इस सत्य के विरुद्ध समझौता कर लें, यदि हम अपना अनुभव इस सत्य से ऊपर रखें, तो हम अपना संपूर्ण विश्वास ढा देते हैं। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पाप हमारी आराधना को विकृत करता है और हमारे विश्वास को विकृत करता है। पाप हमारी इच्छा को विकृत करता है। हमने इस पर विचार किया है। मैं शीघ्रता से इन अंतिम दो बातों को एक साथ रखकर चलूँगा। इच्छा और व्यवहार में आपसी मेल है। किस पल इच्छा पापग्रस्त होकर व्यवहार में बदल जाती है? मैं इसे समझने के लिए कुछ बातों को देखूंगा, तब मैं चाहता हूं कि हम उस पर विचार करें। पाप हमारी इच्छा को विकृत करता है। परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हमने आज काम वासना को कल्पित अधिकार में बदल दिया। जहां अभिलाषाओं का प्रश्न आता है, वहां हम उन्हें उत्तरदायित्वों की अपेक्षा अधिकारों में बदल देते हैं। हम अपनी अभिलाषाओं को अधिकारों में बदल देते हैं। आज हमारी संस्कृति में प्रत्येक नैतिक विषय पर वाद विवाद उत्तरदायित्व पर केंद्रित नहीं होता है, उनका केंद्र अधिकार होता है। चाहे वो काम वासना हो, तलाक हो या गर्भपात हो या समलैंगिकता हो, चयन का अधिकार, व्यक्तिक अधिकार या अधिकार, वो अधिकार हम कहते हैं कि अनुसंधान से, विज्ञान से ये प्रकट होता है कि ये हमारे बल हैं। अतः चर्चा विषय ये नहीं कि समलैंगिक क्या करते हैं, वरन ये कि वे कौन हैं। ये एक बड़ी बात है। ये नहीं कि विषम लैंगिक क्या करते हैं, वे क्या हैं, उनकी अभिलाषाएं, यदि हम में अभिलाषा है तो हमें उनके उपयोग का अधिकार है। हमने अपने दायित्वों को कल्पित अधिकारों में ही बदला, परंतु हमने अपनी अभिलाषाओं को बाइबल की व्याख्या से बदलकर विज्ञान की व्याख्या में कर दिया। मैं यहाँ सावधान रहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि बाइबल विज्ञान विरोधी है। बाइबल किसी सत्य के विरुद्ध नहीं है, चाहे वो विज्ञान का हो या अन्य। विज्ञान हमारी लालसाओं के विषय कुछ भी सिखाए, वे कहाँ से कैसे उत्पन्न होती हैं, कब उत्पन्न होती हैं। धर्मशास्त्र कहता है अनुचित काम वासना अनैतिक है, अपरिहार नहीं है। ये अनैतिक है, अपरिहार नहीं है। इसमें महान अंतर है, इसे हम बाद में देखेंगे। अभी मैं व्यवहार की चर्चा करना चाहता हूँ, तदोपरांत इन विचारों को संयोजित करेंगे। पाप हमारी लालसाओं को विकृत करता है और हमारे व्यवहार को विकृत करता है। हम अपनी लालसाओं को कार्य रूप देते हैं, जो रोमियो अध्याय एक के अंत में दी गई सूची से स्पष्ट है। ये धर्मशास्त्र में अपना दोष देखें, बिना किसी को नहीं छोड़ता है। हम अपने समलैंगिक विषय की परिचर्चा से इसे संयोजित करके देखें। प्राकृतिक व्याख्याओं का नैतिक उत्तरदायित्व। कृपया मेरी बात पर ध्यान दें। आज इस विषय पर बहुत अनुसंधान हो रहा है और अनुसंधान पर परिचर्चा भी बहुत हो रही है। वे अपने अनुसंधान का निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हैं, तथापि अनेक जन निष्कर्ष पर पहुंचने का दावा करते हैं। हमारे जीवन में कामोत्तेजना के अनेक कारणों पर बहुत विवाद है, चाहे वो समलैंगिक हों या विषम लैंगिक वासना हो। अनुसंधानों से समलैंगिकता के विषय अनावरण ये हुआ है कि उसमें जैविक, अनुवंशिक, सामाजिक, परिवेश संबंधित और मानसिक कारण हैं जो अपनी भूमिका निभाते हैं। इस विवाद के मध्य मैं वचन के आधार पर कहना चाहता हूँ कि अनुसंधान कुछ भी प्रकट करें, आप इस बात पर विचार करें। किसी मसीही लेखक ने लिखा, लगभग 13 वर्ष की आयु में मैंने लड़कियों पर ध्यान देना आरंभ किया, या दूसरे शब्दों में मुझे उस समय किसी और का ध्यान आया। ये विषम लैंगिक पुरुष है, 25 वर्ष पश्चात रुझान और अधिक परिष्कृत हुआ और अधिक नियंत्रित हुआ, परंतु बहुत कम। मैं जहाँ भी हूँ स्त्रियों को देखता हूँ और उनके विशेष अंगों को देखता हूँ। मेरे मन में क्षणिक या स्थायी विचार आते हैं कि मैं अनजान स्त्रियों के साथ कामोक्ति का आनंद कैसे लूं? ये स्वाभाविक ही है, या क्या ऐसा है? क्या मुझ में एक दिन में अनेक विभिन्न स्त्रियों के साथ संभोग की भावना जन्मजात है? एक प्रवृत्ति जो 13 वर्ष से शिथिल है, क्या मेरे पिता ने, जिसकी लालसाएं मेरे सदृश हैं, मुझे स्त्रियों के बारे में एक विशेष रूप से सोचना सिखाया? क्या मैं विज्ञापनों, फिल्मों, प्रचलित संगीत में बड़ा हुआ हूँ? क्या मेरी 3 वर्षीय आयु पर माता पिता के तलाक का ये घातक प्रभाव है? यह मेरी शिशु अवस्था में मेरी माता के व्यवहार ने मुझ में ये काम वासना और आवश्यकता उत्पन्न की? ये सब प्रश्न उचित हैं, रुचिकर हैं, परंतु उनमें से कोई सा भी उसकी लालसाओं को गलत या सही नहीं कहता है। कोई भी प्रश्न उसकी लालसाओं की नैतिकता निर्धारित नहीं करता है। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने प्राकृतिक व्याख्याओं को नैतिक उत्तरदायित्वों को उचित ठहराने के काम में लिया है। यदि मुझे ऐसा लगता है तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए। क्या आप इसमें उपस्थित संकट देख रहे हैं? यहाँ भ्रम कैसा स्पष्ट उभरता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आरंभ ही से क्षमा याचना करता हूँ। क्यों, ये अति कटु है, वरन मैं आशा करता हूँ कि ये कटु हो। मैं कश्मकश में ही हूँ कि कहूँ या ना कहूँ, परंतु कृपया समझने का प्रयास करें। मैं समलैंगिक पक्षधरों के विचार और मान्यताओं को पीडोफिलिया से संयोजित करना चाहता हूँ, विशेष करके समलैंगिक पीडोफिलिया से। मैं जानता हूँ कि आप कहेंगे ये उचित तुलना नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण है, एक बालक को हानि पहुँचाना है, परंतु मेरी बात समझने का प्रयास करें। ये मेरी कल्पना नहीं, समलैंगिक पत्रिकाओं के लेखों में है। ऐसा नहीं है कि समलैंगिक कामना करने वाले प्रत्येक जन इससे सहमत हों। अतः सुने, दुरुपयोग की परिभाषा कौन देगा? एक फिडोफील कहेगा, ऐसा कौन सा काम अभिव्यक्ति है जिसमें दुरुपयोग नहीं है? यहाँ तक कि पति और पत्नी के शारीरिक संबंधों में दुरुपयोग है और हानि। अनेक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि पेडोफिलिया में दोनों साथियों को सकारात्मक अनुभवों का आनंद आता है। अध्ययन कहते हैं कि यदि दुरुपयोग से किसी को अच्छा अनुभव प्रदान करे तो ये अच्छा क्यों नहीं है। अंततः पेडोफिल का कहना है, हम दोनों को आनंद आता है, ये अनुचित कैसे हो सकता है। मैं ये करना चाहता हूँ, यदि व्यक्त न करूँ तो परमेश्वर ने मुझे ये लालसा क्यों दी। उसने मुझे ऐसा ही बनाया है, उसने मुझे ये वरदान दिया है। यीशु ने कभी इसके विरुद्ध नहीं कहा। उसने बच्चों को अपने पास बुलाया, मैं विश्वासी हूँ, ये मेरी लालसाएं हैं, मैं बदल नहीं सकता। मैंने चिकित्सकों को दिखाया परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अनेकों ने मुझे परामर्श दिया कि इसे दबा दूं, परंतु मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों का भाग हूँ और परिणाम स्वरूप मुझे और अधिक नागरिक अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। क्या आप संतुष्ट हुए? आप कहेंगे, कदापि नहीं, ये तो नियम विरोधी है। मैं आपको धर्मशास्त्र और जीवन में व्यवहारिक रूप से दिखाना चाहता हूँ कि कार्य कारण के सिद्धांत का अर्थ औचित्य निर्धारण नहीं है। मैं ऐसा ही हूँ, तर्क नहीं है। टाइम पत्रिका में था कि पुरुषों के जनन तत्व में अनिष्ठा विहित है। सज्जनों, चाहे आपके लिए पत्नी के प्रति निष्ठावान होना कितना भी अस्वाभाविक हो, क्यों ना हो, आपको अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्यता का लेखा परमेश्वर को देना होगा, चाहे आपके जनन तत्व कैसा भी रहा हो। पत्नी के प्रति विश्वास योग्य रहने का हमारा उत्तरदायित्व परमेश्वर के समक्ष है। आपका कार्यकारण कैसा भी प्रभावी क्यों ना हो, वो आपको परमेश्वर के समक्ष उचित नहीं ठहराएगा। क्या आप समझ रहे हैं? हमें ये समझना है। मैं ये नहीं कहता कि धर्मशास्त्र हम में से कुछ या अनेक के समलैंगिक विचारों कामनाओं के विषय में कुछ कहता है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि जैसा हमने देखा है कि हम घमंडी मन लेकर जन्मे हैं और हम सब काम वासना प्रवण हैं, चाहे समलैंगिक हों या विषम लैंगिक। यदि आप इन ईश्वर विरोधी अभिलाषाओं से संघर्षरत हैं, क्या आप परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया, तो मैं आशा करता हूं कि आप अपनी मूर्खता देखते हैं, अर्थात ऐसे विचारों की निस्सारता समझते हैं। परंतु मैं ये नहीं कहता कि बाइबल परीक्षाओं की सच्चाई से इनकार करती है। बाइबल ये प्रकट करती है कि हम अपनी परीक्षा का नहीं प्रतिक्रिया का चुनाव करते हैं। आप चाहें विषम लैंगिक या समलैंगिक पाप करें, बाइबल में आपको ये नहीं मिलेगा, तू ये ना करना जब तक कि तू परिवर्तन का कठोर प्रयास न कर ले, प्रार्थना और परामर्श न ले और स्पष्ट हो कि तू इसे रोक नहीं सकता। यदि ऐसा है तो आपके लिए वह विचार पाप नहीं है, ये अंतर्निहित वरदान है। परंतु धर्मशास्त्र में ऐसा आदेश नहीं है। आप कहेंगे कि काम वासना के संबंध में धर्मशास्त्र हमें कहाँ रखता है। मैं नहीं कहता कि इसका उत्तर अभिप्राय आसान है, इसका एक ही समाधान है, सुषमाचार। सुषमाचार में समलैंगिकता के गंभीर अभिप्राय हैं। सुषमाचार समलैंगिकता के लिए क्या करता है? सुषमाचार हमारे जीवनों में क्या करता है? जब हम इस सत्य से साक्षात्कार करते हैं कि जिस परमेश्वर से हमने विद्रोह किया, उसने अपना पुत्र दे दिया और उसने क्रूस पर हमारे व्यभिचार के पाप उठा लिए। प्रत्येक विचार, अभिलाषा, व्यवहार जो उसकी रचना के परे था, उसने इन कामों के प्रति अपना संपूर्ण क्रोध अपने क्रूसित पुत्र पर उंडेल दिया। यीशु ने हमारे विचार के पापों को अपनी शुद्धता एवं पवित्रता पर ले लिया। उसने पाप पर जय पाई, वो मृतकों में से जी उठा। समलैंगिकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला, सुषमाचार हमारी आराधना को सही रूप प्रदान करता है। समलैंगिक पाप ही नहीं, विषम लैंगिक पाप भी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 में ये परिदृश्य है। आपने पद 9, 10, 11 लिख लिए हैं, अतः हम पद 10 से पढ़ेंगे। धोखा न खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परास्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुमसे कितने ऐसे ही थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। वो एक नवदीक्षित कलीसिया से ये कह रहा है जो व्यभिचार नगर में भी और वर्तमान में प्रभु यीशु के नाम से और परमेश्वर के आत्मा में धोकर शुद्ध की गई थी। यह की स्तुति हो। हमें से प्रत्येक के जीवन में काम वासना के क्षेत्र में परमेश्वर उसके अनुग्रह से हमारी आराधना को सही कर देता है, जिससे कि हमारे मन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे। हमारे विश्वास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सुसमाचार हमारे विश्वास का नवीनकरण करता है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से परिवर्तन लाओ। यही कारण है कि हम बाइबल का त्याग करके अपनी बुद्धि से काम नहीं करते हैं। ये परमेश्वर का वचन है और इसे अनदेखा करके सांसारिक रीतियों पर चलकर हम भूखे मरेंगे। हमें इस जीवन की रोटी पर पोषित होना है। ये सुसमाचार का परिदृश्य है। यही हमारे विश्वास का नवीकरण करता है। प्रार्थना करके मसीही जीवन जीने का प्रयास ही सब कुछ नहीं है। सुसमाचार प्रतिदिन हमारे विश्वास का नवीकरण करता है। हमें अपनी संस्कृति में प्रतिदिन सुसमाचार की आवश्यकता है कि संसार के प्रति हमारे विचारों में गंभीर परिवर्तन आए। सुसमाचार हमारी आराधना को सही करता है और विश्वास का नवीकरण करता है। हमारी सब समलैंगिक और विषमलैंगिक लालसाएं सुसमाचार के द्वारा मसीह के पास आती हैं और आप एक श्रेष्ठ लालसा से ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि इस संसार के भोग विलास सब एक हो जाएं, तो भी मसीह अधिक महिमामय, अधिक सुंदर, अधिक संतोषदायक है। वो अच्छा है, वो अनुग्रहकारी है और प्रतिदिन हम उसके समक्ष दंडवत करके कहते हैं, तू मेरी कामना है, तू मेरा संतोष है, तू मेरा जीवन है, तू हर बात का केंद्र है, मैं अपना आनंद, अपना सुख तुझी में पाता हूँ। सुसमाचार हमारी लालसाओं को ताजगी प्रदान करता है और अंत में परमेश्वर हमारे व्यवहार को मुक्ति दिलाता है, हमारे पापी स्वभाव को मुक्ति दिलाता है। मैं एक समलैंगिक की गवाही आपको सुनाना चाहता हूँ जिसकी पत्नी है और 9 बच्चे हैं। वो सुसमाचार के सामर्थ्य की गवाही देते हुए कहता है कि परमेश्वर संपूर्ण चंगाई देता है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि प्रत्येक समलैंगिक का विवाह होगा और 9 बच्चे होंगे। यहाँ विवाह या अविवाहित जीवन मुख्य बात नहीं है। परमेश्वर जिसने हमारी रचना की है, वो हमें पापों के स्थान से लाकर अपनी महिमा के निमित्त काम में लेता है। हमें से प्रत्येक समलैंगिक या विषमलैंगिक का जीवन उसके अनुग्रह से है। हमारा अतीत, हमारे संघर्ष कैसे भी रहे हों, सुसमाचार हमारे स्वभाव को मुक्ति दिलाता है। मैं आपको समलैंगिकता के विषय वचन पर आधारित 3 बातें बताना चाहता हूँ। पहली, नैतिकता का उल्लंघन ना करें। हम देख चुके हैं कि हमें हर एक को परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। धर्मशास्त्र कहता है कि हमारी आँख में लट्ठा है, तो हम क्यों किसी आँख का तिनका देखें। इस पद को मैं विशेष करके इस विषय पर हमारे विचारों से जोड़ना चाहता हूँ। यदि आप समलैंगिकता की निंदा करते हैं, ठट्टा करते हैं, उपहास करते हैं, अपमान करते हैं या चुटकुले बनाते हैं, तो आप उस सुसमाचार का अपमान करते हैं जिसने आपको पापों से उद्धार दिलाया। और ऐसी किसी भी प्रकार की बातों का मसीह की देह में स्थान नहीं है। अतः हमें नैतिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, वरन हमें अपनी आत्मिक और वासना संबंधित अवस्था का बाइबल आधारित अवलोकन करना है। ये गंभीर बात है। मैं आपको इस विलाप के समय बाइबल का इतिहास, परमेश्वर के जनों का इतिहास स्मरण कराना चाहता हूँ कि समय समय पर परमेश्वर चमत्कारी रूप से क्रियाशील हुआ है। जो सामर्थ्य तो नहीं, परंतु वो समय आ रहा है जब कलीसिया के बाहर मनुष्य अपने अपने पापों का अंगीकार करता था, जब कलीसिया में विश्वासी अपने पापों के लिए परमेश्वर के समक्ष निष्ठावान थे, परमेश्वर के समक्ष पापों का सच्चा अंगीकार करते थे। हमें अपने जीवन में व्यभिचार के पाप पर पर्दा नहीं डालना है। हम व्यभिचार, उसके विचार, अभिलाषा और व्यवहार के ऐसे आदि हो गए हैं कि हम उसे पाप की गंभीरता ही नहीं प्रदान करते, परंतु प्रत्येक विचार, अभिलाषा, व्यवहार, प्रत्येक अश्लील चित्र जो उत्पत्ति 1 और 2 में व्यक्त परमेश्वर की रचना से सुसंगत नहीं, उससे हमें दूर भागना है। हम कलीसिया में यदि विवाह के संबंध में परमेश्वर की व्यवस्था को अनदेखा करते हैं तो हमें काम संबंधित नैतिकता पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके कारण सुसमाचार प्रचार की हमारी योग्यता पर कुप्रभाव पड़ता है। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपनी आत्मिक और रीति संबंधित दशा को देखें, परमेश्वर से सत्यानिष्ठा निभाएं। दूसरा, बाहर देखें। हम समलैंगिकों के प्रति अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कार्यालय में कैसे विचार रखते हैं? पहला, हम विनम्र अनुकंपा का प्रदर्शन करते हैं। यदि हम एक दूसरे के साथ जीवन बांटते हैं तो हमें समलैंगिक भावना रखने वालों और परीक्षा में पढ़ने वालों के साथ खड़े रहना है। व्हीटन कॉलेज के स्टेंटन जॉन ने कहा, यदि आप अरुचि के भय से समलिंगों से सहानुभूति नहीं दिखा सकते तो आप प्रभु को निराश करते हैं। अन्य विश्वासियों के साथ विषम लैंगिकता के पाप के संघर्ष का अंगीकार तो सराहनीय हो जाता है, परंतु समलैंगिक मनुष्य अपने विचारों और अपनी अभिलाषाओं को लेकर चर्च में किसके पास जाए? उसके पास तो कोई स्थान नहीं है। यही तो समस्या है। हमें एक दूसरे के साथ निष्ठापूर्वक जीवन बांटना है। रोमियो 12 का यही संपूर्ण दृश्य है। एक दूसरे को स्वीकार करो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे को ढाढ़स बंधाओ, विनम्रतापूर्वक अनुकंपा का प्रदर्शन करो और गहरा पाप बोध रखो। एक के बिना दूसरा नहीं। आज का चलन देखें, कलिसियाई वर्ग देखें, वे समलैंगिकों स्त्री पुरुष का अभिषेक कर रहे हैं, समलैंगिक बिशप बन रहे हैं। उन्होंने वचन को त्याग दिया है और उनका कहना है कि ये अनुकंपा प्रदर्शन है। सच तो यह है कि ये अनुकंपा नहीं, धोखा है, परंतु उनमें अनुकंपा नहीं। आपको दोनों काम करने हैं, अनुकंपा और पाप बोध दोनों साथ साथ चलते हैं। आप एक दूसरे के साथ वचन में बने रहते हैं। हम वचन पर रोते हैं, हम वचन के आधार पर एक दूसरे से याचना करते हैं, वचन के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों में, अपने मित्रों में एक दूसरे के साथ विनम्र अनुकंपा का प्रदर्शन करो। गहरा पाप बोध बनाए रखो। गहरा पाप बोध बनाए रखना आसान नहीं है, वचन को थामे रहना आसान नहीं है, विशेष करके जब आपको कोई घनिष्ठ संबंधी कहे कि वो समलैंगिक गतिविधियों में सहभागी हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गहन पाप बोध बनाए रखो और विनम्र अनुकंपा रखो। भीतर देखो, बाहर देखो और ऊपर देखो, ये मुख्य बात है। परमेश्वर की महिमा बढ़ाओ, यहीं से आरंभ करके यहीं लौट कर आना है। मसीह परमेश्वर हमारे अनुराग और लालसाओं का, हमारे विचारों का, हमारे मन का, हमारी आराधना का केंद्र है। वो हर एक बात का केंद्र है। ये मेरे लिए रोमियो अध्याय 1 का सबसे अधिक भयावह भाग है। आपने वहां देखा है कि परमेश्वर ने उन्हें अपने मन की पापी अभिलाषाओं में ही छोड़ दिया। परमेश्वर ने उन्हें मन की पतित अवस्था में छोड़ दिया। इससे न चूकें। रोमियो अध्याय 1 में परमेश्वर के प्रकोप का कारण वासना और वासना संबंधित विचार केवल रोमियो 1 ही में नहीं है। ये एक परिदृश्य है कि परमेश्वर हमें अपने मन की निकम्मी अभिलाषाओं पर छोड़ देता है। ये हमारे लिए विलाप का कारण है कि अपनी संस्कृति और कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तू कलीसिया में अपने अधिकृत स्थान पर पुनः स्थापित हो। हम चाहते हैं कि तू सब जातियों में महिमा का सर्वोच्च राजा हो। हम नहीं चाहते कि हम अपने मन की निकम्मी अभिलाषाओं में छोड़ दिए जाएं। हम तुझे चाहते हैं, हमें तेरी आवश्यकता है। हमें ऐसी प्रार्थना करने की आवश्यकता है, कलीसिया में ऐसी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ऊपर देखें, उसकी महिमा बढ़ाएं। परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करे, हमारे राष्ट्र को चंगाई दे, अपनी महिमा बढ़ाने और सुसमाचार फैलाने में हमारी सहायता कर। प्रभु, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रहने के लिए नहीं बुलाया है, उसने हमें सत्यवादिता के निमित्त बुलाया है, उसने हमें चुनाव जीतने के लिए नहीं बुलाया है, उसने हमें दिल और आत्मा जीतने के लिए बुलाया है, उसने हमें सरकार चलाने के लिए नहीं बुलाया है, उसने हमें सुसमाचार प्रचार करने, सुसमाचार उद्घोषणा करने और सुसमाचार का जीवन जीने के लिए बुलाया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मसीह हमारे जीवन का केंद्र हो, हमारे अनुराग का केंद्र हो, हमारे परिवार का केंद्र हो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि मसीह आपके जीवन का केंद्र नहीं है तो उसे केंद्र बनाओ, उसे केंद्र में स्वीकार करो। अब यदि आप में विषम लैंगिक लालसाएँ हों या समलैंगिक लालसाएँ हों, आप कहें मसीह मेरी आराधना का केंद्र नहीं रहा है। मैं चाहता हूं कि आप कृपया कहें मसीह मैं तुझे अपने जीवन के केंद्र में चाहता हूं। विश्वास करके सुसमाचार को ग्रहण करें। और यदि आप व्यभिचार के पाप से संघर्षरत हैं तो कहें मैं स्वयं यही नहीं कर सकता, मुझे केंद्र में मसीह की आवश्यकता है कि वो मेरी आराधना को यथावत सुचारू बना दे। इसका प्रभाव विश्वास पर, लालसाओं पर, व्यवहार पर पड़ता है। हमें अपनी आराधना को सही परिपेक्ष में लाना है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी सहायता कर। हे परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि तुझे अपने मन के केंद्र में रखें, कि मसीह तू हमारे जीवन का केंद्र हो और तू हमारे शारीरिक संबंधों का केंद्र हो। तेरे साथ ईमानदारी निभाने में हमारी सहायता कर कि हमारे संघर्ष और विचार, लालसाओं का संघर्ष, आचरण का संघर्ष और अंत में तुझे मन के केंद्र में रखने का संघर्ष। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि तू इस समय ये कर कि हम सब तेरे साथ पारदर्शी हों। यीशु के नाम में आमीन। यीशु का चित्रण ये है कि वो हमारे जीवन में हर एक बात का केंद्र है, हमारे मन मस्तिष्क का केंद्र है, हमारे कार्यों का केंद्र है, हमारी लालसाओं का केंद्र है। हम प्रभु तुझे हमारा सर्वस्व बनाना चाहते हैं। ये हम परमेश्वर से कहें, संभवतः पहली बार या बहुत समय बाद आज कहेंगे।